नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर नानाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना
आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन को आरंभ करने से पहले आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए और आज के अध्ययन के लिए उससे सहायता मांगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए और प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दीजिए, हमें एकाग्रतापन दीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम सीखते हैं हमारे जीवन में ये वचन कार्य करने पाए। इस समय हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में दुखी और निराश हैं, चिंता और परेशानी में हैं, जो बीमारी हालत में हैं या किसी अन्य रीति से दुखी हैं। पिताजी, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, उन्हें भी अपने वचन के द्वारा आशीषित कीजिए, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो ये वचन उनके हृदय से बातचीत करने पाए और वे विश्वास कर सकें कि आप प्रभु हैं, आप छुटकारा दे सकते हैं, आप शांति दे सकते हैं, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। आज के इस वचन में हम आपकी विशेष उपस्थिति चाहते हैं। पिताजी, आप हम में से हर एक से बोले और बातचीत करें। इस समय को हम में से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति को चंगा करते हैं और उसने बड़े खुशी से कहा था, हल्लेलुया, मैं देख सकता हूँ। और यह चुनौती आपके लिए और मेरे लिए भी रखी गई है कि क्या हम हल्लेलुया कह सकते हैं? क्या आज हम अंधेपन में हैं या उसमें से बाहर निकल गए हैं? और इसका एक ही मार्ग है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। आइए आज हम उसमें से और आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे दर्शक गण। जो दर्शक थे उनके बारे में हम देखेंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा, यह वही है। औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। ध्यान दीजिए, दर्शक कहते, देखो वह अंधा देखता है। कुछ ने कहा, नहीं, यह कोई और है जो उसके स्वरूप दिखता है या उसके जैसा है, अतः उसे अपनी पहचान सिद्ध करनी पड़ी। दर्शक समझ गए थे कि उसमें कोई महान परिवर्तन आया है। इसी प्रकार जब हम उद्धार पाकर बदल जाते हैं तो अलग ही दिखाई देते हैं। मनुष्य हम में आया बदलाव देखते हैं। यदि बदलाव दिखाई न दे तो कुछ अवश्य ही गड़बड़ी है। हम यूहन्ना 9 अध्याय उसके 10 से 12 पद में पढ़ते हैं, तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलोह में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। मेरे प्रियो, मुझे इस मनुष्य की गवाही बहुत अच्छी लगती है। उसकी गवाही में कोई दिखावट नहीं था और न ही कोई व्यर्थ का वर्णन। उद्धार सीधा और सरल होता है। यीशु के पास आओ और परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करो। उसने तो यीशु को देखा भी नहीं था, तथापि प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। यही महत्वपूर्ण है। हम यीशु को देखने के प्रयास में न रहें, केवल विश्वास करें। अब हम दूसरी बात देखते हैं। फरीसी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा हुआ है, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आंखें किस रीति से खुल गई? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। आप क्या सोचते हैं? क्या फरीसी उसे देखकर खुश थे? देखिए फरीसियों की प्रतिक्रिया क्या होती है। यूहन्ना 9 उसके 16 पद में, इस पर कई फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त के दिन नहीं मानता। और उन्होंने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़ी। मेरे विचार में तो धुरता में वे यूनानी दार्शनिकों को भी मात देते थे। वे वाद विवाद में प्रवीण थे। उनका तर्क सुनिए कि वे क्या कहते हैं। मुख्य विषय, परमेश्वर के जन शब्द को मान देते हैं। अब प्रधान विषय है, यीशु ने शब्द को तोड़ा है। निष्कर्ष है, यीशु परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब सत्य यह था कि केवल परमेश्वर का जन ही उस अंधे को दृष्टिदान दे सकता था और यीशु ने उसे दृष्टिदान दिया, अतः यीशु परमेश्वर की ओर से है। आज हमारी समस्या भी यही है। संसार नाश हुआ जा रहा है और हम अपने ही तरीके से अड़े हुए हैं। यूहन्ना 9 उसके 17 और 18 पद में लिखा है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि यह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके माता पिता को, जिसकी आंखें खुल गई थी, बुलाकर उनसे न पूछा। यीशु ने व्यवस्था पालन नहीं किया तो वह पापी है। तब वह ऐसा ईश्वरीय काम कैसे कर सकता है? इस अंधे के माता पिता से पूछते हैं। विश्वास नहीं करने के लिए छोटा सा बहाना ही बहुत होता है। हम देखते हैं कि वे उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। यूहन्ना 9 अध्याय उसके 19 से 22 पद में लिखा हुआ है, उनसे न पूछा कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह क्यों कर देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब क्यों कर देखता है और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप ही कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। मेरे प्रिय मित्र, वे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि यीशु ने उसे दृष्टिदान दिया है। वे उसके माता पिता को भी फंसाना चाहते थे, परंतु उन्होंने कह दिया कि वह अंधा था और अब देखता है, शेष सारी बातें उसी से पूछा जाए क्योंकि वह वयस्क है। दर्शकों ने तो यीशु के चमत्कार को सत्यापित किया, परंतु आज के बुद्धिजीवी उसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। हम यूहन्ना 9 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं, इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वह सयाना है, उसी से पूछ लो। मेरे मित्र, उसके माता पिता स्वीकार करते थे कि चमत्कार हुआ है, परंतु वे यीशु का नाम लेने से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वे समाज से बाहर कर दिए जाएं। धर्मगुरु चमत्कार से इनकार नहीं कर रहे थे, वे केवल यह चाहते थे कि यीशु का नाम ना हो। मेरे मित्रों, यहूदियों के धर्मगुरु ऐसे अंधे थे जो देखकर भी नहीं देखते थे, समझकर भी नहीं समझते थे और गवाही सुनकर भी नहीं मानते थे। अतः वे उस अंधे व्यक्ति के माता पिता को बुलवा कर पूछते हैं कि उनके लिए परमेश्वर से बड़ी प्रथाएं थी। प्रथाएं आज भी हमें यीशु से दूर करती हैं। उनके मन कठोर थे, उनकी आत्मिक संवेदना भर चुकी थी, वे यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस अंधे मनुष्य की आंखें खुल गई और उसने यीशु में विश्वास किया। अभी उनका खेल समाप्त नहीं हुआ है, उन्होंने उसे फिर बुलाया। हम यूहन्ना 9 उसके 24 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। ध्यान दीजिए, ओहो, वे तो बहुत धर्मी हैं। उन्होंने उस मनुष्य से कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, इस पापी का नाम मत ले। यूहन्ना 9 उसके 25 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। मेरे प्रिय मित्र, उसकी गवाही पर ध्यान दीजिए, मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। यही तो विश्वासी की गवाही है। मैं आत्मिकता के अंधकार में आ गया था, अर्थात अंधकार में था, परंतु अब ज्योति में हूँ। मेरे प्रिय मित्र, गवाहियों में हमें देखने को यही मिलता है कि कोई कभी बड़ा नामी गुंडा था या कुख्यात मर्यादा विरोधी स्त्री थी। मेरे कहने का अर्थ है कि गवाहियों में भी हम अपने आप को हीरो बनाते हैं और यीशु को पीछे छोड़ देते हैं। सीधी सच्ची गवाही है, मैं अंधा था और अब मैं देखता हूँ। यूहन्ना 9 उसके 26 में लिखा है, उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली गई। फरीसी अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। वे आज के थियोलॉजियन की नाई अर्थात बाइबल कॉलेज के लोगों की तरह कहीं न कहीं कुछ पकड़ना चाहते थे कि यीशु को नीचा दिखाए। यूहन्ना 9 अध्याय उसके 27 और 28 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने न सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उससे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह अंधा व्यक्ति उनकी धुरता को समझ गया और उपहास पूर्वक कहा, क्या तुम उसके शिष्य बनना चाहते हो? फरीसी जगत की ज्योति देखने में अंधे तो थे ही, वे उसकी गवाही सुनने के लिए भी बहरे थे। हम यूहन्ना 9 अध्याय उसके 29 से 34 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर वही तर्क आता है, यदि आप विवाद न कर पाए तो मजाक करें अर्थात ठट्ठा करें। वे उसके तर्क के सामने निरुत्तर थे। सृष्टि से आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया कि जन्म के अंधे को दृष्टि दान दे, अतः ऐसा करने वाला केवल परमेश्वर ही हो सकता है। यहाँ ध्यान दें कि उसने अभी तक यीशु को देखा नहीं है। अब क्या करें, उसे समाज से बाहर कर दो। तब हम आते हैं और देखते हैं चौथी बात जो है, वह अंधा व्यक्ति यीशु से भेंट करता है। यूहन्ना 9 अध्याय उसके 35 से 38 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। अब देखिए कि यीशु दृश्य में आता है और इस व्यक्ति ने विवाद में यीशु का पक्ष लिया और विजयी हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वह समाज से बहिष्कृत किया गया, परंतु यीशु ने उसे नहीं त्यागा। यीशु सदैव खोज में रहता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर उसमें काम कर रहा था। अब उसे परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करना था। यीशु उससे सीधा प्रश्न करता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसके अनुभव ने उसके विश्वास को दृढ़ता प्रदान की थी और यीशु जानता था कि वह अब अंतिम चरण के लिए तैयार था। मेरे मित्र, यहां उसकी जिज्ञासा पर ध्यान दीजिए। वह यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता था। यीशु ने बड़ा सौरभ उत्तर दिया, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने विश्वास किया और यीशु को दंडवत भी किया। यह संपूर्ण धर्मशास्त्र में विश्वास का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यीशु उसे एक एक चरण लेकर चला कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अंगीकार करे कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। मेरे प्रिय मित्र, हर एक पापी के साथ ऐसा ही होता है। पहले हम अंधे होते हैं, हम पापी थे, हमें अपनी विनाशकारी दशा का ज्ञान नहीं था। हम मसीह के पास आए और हमारी आंखें खुल गई और हमने उसे पहचाना कि वह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। तब एक प्रश्न है, क्या तू मुझ में विश्वास करता है? हमारा उत्तर भी वैसा ही होगा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। तब आप उसके चरणों में गिरकर उसकी स्तुति करते हैं। हम यूहन्ना 9 अध्याय उसके 39 पद में पढ़ते हैं, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। मेरे प्रिय मित्र, यीशु की यह बात कुछ विचित्र सी लगती है, परंतु सच है। मनुष्य के पास आंखें तो हैं, परंतु वह आत्मिक अंधा है। यदि वह यीशु के पास आ जाए तो यीशु उसकी आत्मिक आंखें खोल देता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझता है, उसके लिए वह मूर्खता है और वह उन्हें ग्रहण भी नहीं करता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह के पास आकर भी पूछें सत्य क्या है, या कहें मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह मेरा उद्धारकर्ता कैसे है, तो आप आत्मिक अंधे हैं। फरीसियों के पास आंखें थी, वे धर्म के पालक थे, वे जोशीले थे, परंतु वे अंधे थे। मेरे प्रिय मित्र, आज वे जो सुसमाचार से रहित हैं वे अंधे हैं, वे अंधकार में हैं। यदि किसी को यीशु के बारे में जिज्ञासा है तो प्रभु यीशु उस तक सुसमाचार अवश्य पहुंचाएगा। आज कलीसिया के सदस्य ज्योति में सुसमाचार सुनाते हैं तो उन्हें अपने अंधेपन का बोध अवश्य होगा। यीशु ने कहा, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 23 पद में पाते हैं। मेरे मित्र, यदि आप जगत की ज्योति मसीह यीशु को जानकर भी विश्वास नहीं करते हैं तो आप आत्मिक अंधे हैं। मेरे मित्र, संसार के उद्धारकर्ता को त्याग कर आपको उद्धारकर्ता कहाँ मिलेगा? आपके पास है, लेकिन आप उसके पास आना नहीं चाह रहे हैं। यूहन्ना 9 अध्याय उसके 40 और 41 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। मेरे प्रिय मित्र, जो नहीं देखता उसने पाप नहीं किया, परंतु देखने वाला स्वीकार न करे तो वह पापी है। मसीह जगत की ज्योति के सामने, परमेश्वर के प्रकाशन के सामने वे कह रहे थे कि उनमें पाप नहीं है। आज भी रूढ़िवादी जो कहते हैं कि वे देखते हैं, परंतु सच तो यह है कि वे अंधे हैं। उनके हाथों में लाठी नहीं है तो मन में यीशु भी तो नहीं है। मेरे मित्रों, हमने अपना अध्ययन आरंभ किया था एक जन्म के अंधे को यीशु द्वारा दृष्टिदान से, जिसकी शारीरिक और आत्मिक आंखें दोनों खुल गई थी, और अंत किया उन आंख वाले धर्म गुरुओं से जो आत्मिक अंधे थे परंतु सोचते थे कि वे देखते हैं। परंतु सवाल अब है कि हमारी क्या दशा है? क्या आज हम उस अंधे व्यक्ति के समान हैं जो अंधे थे और अब देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि मैं अंधा था अब मैं देखता हूं, या हम इन फरीसियों और सदूकियों के समान हैं जो कहते हैं कि हम देखते हैं लेकिन वे पाप में हैं? मेरे मित्र, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है कि आप कौन सा जीवन जी रहे हैं। क्या आप उस आंख वाले का जीवन जी रहे हैं या आप उस आत्मिक अंधेपन में हैं? आज निर्णय लेकर के हम प्रभु के पास आए, उससे कहें ताकि वह हमारे अंधेपन को हमसे दूर करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। आज आपने अपने जीवित वचन के द्वारा इस बात का हमें स्मरण दिलाया है कि हम इस संसार में रहते हैं, हमारी आंखें तो हैं लेकिन हम आत्मिक रीति से अंधे हैं। कई बार हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। हमारी प्रार्थना है पिताजी, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आज आपके जीवित वचन को सुने हैं, प्रभु प्रत्येक की आत्मिक अंधेपन को आप दूर कर दें, प्रत्येक के जीवन में अपनी ज्योति दे दें ताकि हरेक का जीवन प्रकाशमान होने पाए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि ज्योति आपके पास में है, सिर्फ आप ही हमारे अंधेपन को दूर कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें से प्रत्येक की सहायता और मदद करें। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप उनकी रक्षा रखवाली करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें और सबसे बढ़कर के उनके आत्मिक जीवन को बलवंत करें। जिन्होंने प्रार्थना किया है, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कठिन रास्ता।